ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हर सोमवार को चैतन्य चरितमृता की क्लास होती है और आज हम पढ़ रहे हैं आदि लीला का सातवें अध्याय श्लोक 150। यू आर ट्रांसलेटिंग ओवर देयर फॉर यू। ए माते संसबारा शामी अपराधा सबाकारे कृष्ण नाम करीला प्रसादा। ए माते तनसबार कशामी अपराधा सबकार कृष्ण नाम करील प्रसाद। ए माते तनसबार कशामी अपराधा सबकार कृष्ण नाम करील प्रसाद। ए माते तनसबार कशामी अपराधा सबकार कृष्ण नाम करील प्रसाद।
मते तासमार क्षमी अपराध सबाकार कृष्ण नाम करीला प्रसाद।
माता जी शब्द अर्थ अनुवाद और तात्पर्य।
अनुवाद मेरे पीछे बोले सब लोग। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों के सारे अपराध क्षमा कर दिए और उन पर कृपा करके उन्हें कृष्ण नाम का आशीर्वाद दिया। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के कृपा अवतार हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने उन्हें महावदान्यावतार कहकर संबोधित किया है। वे उन्हें करुणयावतीर्णः कलौ अर्थात इस कलयुग में अपनी कृपा से अवतीर्ण भी कहते हैं। यह इसी का दृष्टांत है। श्री चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासियों को देखना नहीं चाहते थे क्योंकि वे उन्हें कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी मानते थे, किंतु यहाँ पर वे उन्हें क्षमा करते हैं। तासवार क्षमी अपराध ये उपदेश देने का दृष्टांत है। आपनी आचार्य भक्ति सिखायुमु सबारे। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखलाते हैं कि उपदेशकों की जिनसे भेंट होती है वे सभी कृष्ण भावनामृत के विरोधी होने के साथ ही अपराधी भी हैं, किंतु उपदेशकों का कर्तव्य है कि उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति आश्वस्त करें और उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित करें। हम संकीर्तन आंदोलन के प्रचार कार्य को तमाम विरोधियों के बावजूद चालू रखे हैं और अफ्रीका जैसे विश्व के सुदूर देशों तक में इस कीर्तन विधि को ले जा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपराधियों को भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित करके कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सफलता का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। हमें चाहिए कि आदर पूर्वक महाप्रभु चैतन्य के चरण चिन्हों पर चलें और इसमें संदेह नहीं कि हम अपने प्रयासों में सफल होंगे।
ओम ज्ञानानंदस्य ज्ञानांजनाशलक्या चक्षुरन्मिलितानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वापदं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सगराजतं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सुवधूतम् परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललित श्री विशाखान्वितं स्तः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंस नामा कंस नमोस सप्त कंचन गौरांगी वंच कल्प सर्भ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पवनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त हरे कृष्ण
ऐ मते तन सबालाश्यामि अपराधा सबाल कृष्ण नाम क्रीला प्रसादा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों के सारे अपराध क्षमा कर दिए और उन पर कृपा करके उन्हें कृष्ण नाम का आशीर्वाद दिया। तो इस अध्याय में आपने पढ़ा है किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने मायावादी सन्यासियों का उद्धार किया। मायावादी सन्यासी के गुरु थे प्रकाशानंद सरस्वती, और जब महाप्रभु वाराणसी आए और रह रहे थे एक भक्त चंद्रशेखर के घर में, तो इन मायावादियों ने उनकी आलोचना की कि इतने प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान होते हुए भी वेदांत सूत्र का अध्ययन के बजाय ये पागल जैसे नाच रहे और गा रहा है। और महाप्रभु जी ने क्या कहा कि मेरे गुरु ने सोचा कि मैं मूर्ख हूं, और कहा कि तुम्हारे में यही योग्यता है और कुछ योग्यता नहीं। खैर आगे जाकर महाप्रभु जी ने उन्हें ये समझाया अभिदया संबंध प्रयोजना कि संबंध क्या संबंध होना चाहिए हर व्यक्ति का जीवात्मा का भगवान के साथ। आगे उन्होंने ये समझाया कि अभिदया किस प्रकार से ये संबंध को आप स्थापित कर सकते हो, और परियोजना कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जब मायावादी सन्यासियों ने ये चर्चा ये व्याख्या सुनी तो इतने प्रभावित हो गए कि उन सब ने प्रणाम करके ये कहा कि आप ही हो स्वयं भगवान। इससे पहले जैसे आपने पढ़ा था महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य लीला भी प्रकट की थी, जबकि वो जहां बैठे थे वहां उन्होंने अपने चेहरे से लाखों सूर्यों का प्रकाश प्रकट किया, और जब इन मायावादियों ने यह प्रकाश देखा तो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं भगवान होंगे। तो इन मायावादी सन्यासियों ने ये स्वीकार किया दस माता जी ये स्वीकार किया कि ये स्वयं भगवान हैं और बड़ी निम्रता से उनसे क्षमा मांगी. उन्होंने माफी मांगी कि हमने आपके विरोध में अनेक प्रकार के अपराध किए हैं. पिछले श्लोकों में मायावादी सन्यासियों ने ये स्वीकार किया है क्या? ये डू दिस आफ्टर द क्लास प्रभु, नॉट इन द क्लास. क्लास में क्यों कर रहे हो? क्लास के बाद करो. तो मायावादी सन्यासियों ने ये स्वीकार किया कि हमने अपराध किया है, हमें क्षमा कर दो. वैष्णव सिद्धांत में अगर हम अपराध करें तो हमें इस अपराध की माफी मांगनी चाहिए. अगर हम अपराध भी करें और अहंकार के कारण क्षमा भी नहीं मांगे तो अवश्य ही उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा. पर अगर आप अपराध करके इसकी क्षमा मांगो तो वैष्णव इतने दयालु होते हैं कि वो क्षमा कर देते हैं. तो मायावादी सन्यासियों ने बड़ी निम्रता के साथ ये स्वीकार किया कि उनके विचार गलत थे. उन्होंने अपराधी शब्दों का उपयोग किया है महाप्रभु जी के प्रति और प्रणाम करते हुए उनसे अपराधों की क्षमा मांगी और ये स्वीकार किया कि आप ही हो स्वयं भगवान. तो आज के श्लोक में कहा जा रहा है इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों के सारे अपराधों को क्षमा कर दिया. तो ये है वैष्णव का खास गुण, वो दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देता है. जैसे कि आप पढ़ते हो नौवे स्कंद में दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज की कथा कि दुर्वासा मुनि के हृदय में द्वेष था अमरीश महाराज के प्रति. जब उन्हें मौका मिला उन्होंने सोचा कि वह अमरीश महाराज ने जल पी लिया उनकी राह देखे बिना, तो उन्होंने इसका अवसर का लाभ उठाया, अपने सीके से एक राक्षस पैदा किया ये इस विचार के साथ कि हम अमरीश को जला देंगे. अमरीश महाराज तो जुड़े हुए थे भगवान के चिंतन में, सवे मना कृष्ण पधारा बिंदयो. भगवान गीता में ये भी कहते हैं कौन थे अपराधी जाने ही न में भक्त प्रनशति. तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा किया. जहां दुर्वासा मुनि भागे उनके पीछे था भगवान का सुदर्शन चक्र, जिससे इतनी गर्मी आ रही थी जैसे कि आजकल धूप जल्दी आ जाती है तो धूप में चलना आसान नहीं है. पर सुदर्शन चक्र के द्वारा तो इतनी तेजी से गर्मी लगती है कि वो आपके शरीर को जलाती है. तो दुर्वासा मुनि भागे हर जगह, फिर वो भगवान के पास पहुंचे. भगवान ने भी क्या कहा कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता. तो कौन कर सकता है? मेरा भक्त. मैं मेरे भक्तों के हृदय में निवास करता हूं और वो मेरे हृदय में निवास करते हैं. फिर दुर्वासा मुनि आए अमरीश महाराज को प्रणाम करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी और अमरीश महाराज ने क्षमा भी किया और फिर उनके साथ बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया. इसी प्रकार आप चैतन्य चरितमृता में कथा पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ श्रीवास पंडित के घर में लगातार एक साल के लिए हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे. एक ब्राह्मण था जिसके हृदय में द्वेष था. श्रीवास को इतना आदर प्राप्त हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि उनकी बेइज्जती की जाए. कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत हो रहा है तो हम ईर्ष्या द्वेष के कारण किसी प्रकार से उसकी बेइज्जती करने का प्रयास करते हैं. तो उसने श्रीवास के द्वार के सामने दुर्गा देवी जी की पूजा का सामान रख दिया, शराब वगैरह मांस. श्रीवास ने जब खोला दरवाजा अगले दिन सुबह देखा ये सब सामान, तो श्रीवास ने क्या कहा? देखो पड़ोसी, मैं तो दुर्गा का भक्त था और हूं, पर केवल पखंड कर रहा हूं कि मैं कृष्णा का भक्त हूं। खैर, किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया, सबने गाय के मूत्र को और गोबर लेकर उसे साफ कर दिया। पर जिस व्यक्ति ने शरारत की थी उसे घोर की बीमारी हो गई। वो महाप्रभु जी के पास गए, महाप्रभु जी से कहा कि मुझे माफ कर दो। महाप्रभु ने कहा तुम्हें तो हजारों साल इसका परिणाम भुगतना चाहिए। वो घोर के कारण बीमार दर्द सहते गया, कई साल बीत गए। फिर महाप्रभु जी जब संन्यास लेकर लौटे और जब फिर से इस ब्राह्मण ने ये विनती की तो महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, पर श्रीवास कर सकता है। और फिर वो गए श्रीवास के पास जिन्होंने उनको क्षमा किया। तो वैष्णव जो है क्षमा करते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप जानबूझकर अपराध करो। आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र पोते सबका देहांत हो गया था। और आप ये भी जानते हो कि युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र ने हर प्रकार से प्रयास किया था कि किसी न किसी माध्यम से ये वैष्णव पांडव भाइयों का अंत आ जाए, पर वो सफल नहीं हुए। जैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रयास किया था किसी न किसी रूप से प्रहलाद का अंत आ जाए, पर वो सफल नहीं हुए। कहा जाता है राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसको भगवान बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, जिसे मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर महाराज, जिनका एक और नाम है धामराज, उन्होंने धृतराष्ट्र को शोक प्रकट किया और उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी। कोई और व्यक्ति होता तो वह कहता अब मैंने बदला लेना है, तो जब तुम्हारे पास अधिकार था तुमने हमें इतने कष्ट दिया, हमें इतना कष्ट, अब हम तुम्हें फांसी पर लगाएंगे, कोई जेल भेजेंगे, है कि नहीं। पर उल्टा युधिष्ठिर ने क्या कहा, आपके सारे पुत्र सबका देहांत हो गया है, आप ये महल लीजिए। और युधिष्ठिर ने हर प्रकार की सुविधा दी, इतनी सुविधा दी चौकनाक और चाकर, इतनी सुविधा दी कि धृतराष्ट्र सोचने लगे अंत में मेरी राजसिक अभिलाषा पूरी हो गई है। और फिर विदुरा के कहने पर उन्हें होश आया और उन्होंने वो सुख की स्थिति को त्यागा। तो वैष्णव जो है हर रूप से दया दयालु होता है, और अगर हम अपराध करें तो अपराधों के लिए क्षमा करने को तैयार है, पर हमारे में वो पछतावा होना चाहिए कि हमने अपराध किया है। आप पढ़ते हो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत में कि महाप्रभु जी ने जब अपने प्रचार का आंदोलन आरंभ किया तो उन्होंने अपने भक्तों को कहा था क्या, घर घर जाकर प्रचार के लिए। इस विषय की चर्चा हम आगे भी करेंगे, क्योंकि आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी प्रचार के कार्य पर बल दे रहे हैं। तो जब महाप्रभु ने आदेश दिया और उन्होंने हरिदास और नित्यानंदा को भी यही आदेश दिया था घर घर जाकर प्रचार करने के लिए, हरिदास और नित्यानंदा ने प्रचार आरंभ किया और लोगों से वो पूछ रहे थे कि हमारे शहर में सबसे ज्यादा पापी व्यक्ति कौन है। और पूछने पर उन्हें ये पता लगा कि दो भाई थे जिनका नाम था जगन्नाथ और माधव, जो जिनका जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, जो गिर गए थे बुरी संगत में और हर प्रकार के पाप के कार्य में जुड़े हुए थे. तो महाप्रभु जी का आदेश क्या था? बोलो कृष्णा, भाजो कृष्णा, लो कृष्णा नाम. क्या? कृष्णा का नाम लो, कृष्णा का भजन लो करो और कृष्णा के विषय में चर्चा करो. कृष्णा माता, कृष्णा पिता, कृष्णा धन प्राण. कृष्ण भगवान जो हैं वही आपके असली माता, वही आपके असली पिता, वही आपके असली धन और वही आपके प्राण. तो ये था नित्यानंद जी का उपदेश. तो नित्यानंद हरिदास जैसे भी कहते थे वैसे यही कहते, बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण लो कृष्ण नाम हर व्यक्ति से. तो जो ब्राह्मण जब जब उन्हें मिलते थे, ब्राह्मण तो बड़े खुश होते थे, ब्राह्मण उनका स्वागत करते थे, आदर देते थे. पर साथ साथ कई व्यक्ति उनका आदर नहीं भी देते थे, खास करके वो व्यक्ति जिन्हें रोक दिया था श्रीवास आंगन में प्रवेश करने से. जब चैतन्य महाप्रभु जी अपना दिव्य संकीर्तन लीला प्रकट कर रहे थे श्रीवास पंडित के घर में, तो केवल उनके जो शुद्ध भक्त थे उन्हें ही अंदर आने की इजाजत थी. तो कहीं ब्राह्मणों इत्यादि को अंदर आने नहीं देते थे. तो जिन्हें नहीं आने देते थे, जो वो मिलते थे नित्यानंद और हरिदास को, तो वो क्या कहते थे? तुमने हमें अपने स्थान में आने नहीं दिया, हम तुम्हें अपने घर में आने नहीं देंगे, निकल जाओ बाहर से. और कई लोग क्या कहते थे? लगता है ये लोग जासूस हैं, ये लोग घर घर जा रहे हैं देखने के लिए कि हर घर में कितनी संपत्ति है, फिर बाद में जहां ज्यादा संपत्ति होगी वहां चोरी करने आएंगे. तो जब लोग इस प्रकार से कहते थे तो नित्यानंद हरिदास हंसते थे. उनका भाव केवल एक ही था, घर घर जाकर महाप्रभु जी के आंदोलन को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये था महाप्रभु जी का आदेश. महाप्रभु ने क्या कहा था? जाड़े दको ताहे कहो कृष्णा उपदे. और महाप्रभु जी ने सब साथियों को यह आदेश दिया था घर घर जाकर प्रचार करने का, बोलो कृष्णा भाजो कृष्णा लो कृष्णा नाम. तो जब इन्हें पता लगा ये दो भाइयों के विषय में, जैसे आप जानते हो गए थे जगाई मदाई को प्रचार करने के लिए, तो जगाई मदाई को अच्छा नहीं लगा कि अब प्रचार करने आए. कई लोगों ने उन्हें पहले सूचना दे दी थी, तुम इन दो बदमाशों के पास मत जाओ, ये हमेशा शराब के नशे में रहते हैं, रोज मांस खाते हैं, हर प्रकार का अपराध इन्होंने किया है समाज में. केवल एक वैष्णव निंदा नहीं की थी अब तक, हर प्रकार का अपराध किया है, इनसे बचकर रहो. हरिदास और नित्यानंद ने सोचा हमने ये स्थापित करना है कि महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, अगर इनका उद्धार हो जाए तो सब कहेंगे कि ये संकीर्तन आंदोलन में सचमुच ताकत है. तो गए इन दो को प्रचार करने, उनको यही कहा बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण लो कृष्ण नाम. और कई बार ये जगाई मदाई महाप्रभु जी के घर के बाहर बैठते थे शराब के नशे में, जब महाप्रभु अपने घर के अंदर कीर्तन करते थे तो ये नाचते थे बाहर, बाहर इनको आवाज आती थी और ये नाचते थे. पर इतने शराब के नशे में उनको पता नहीं रहता था कि ये आध्यात्मिक गुणगान है या कुछ. तो जगाई मदाई ने जो पहले दिन पहुंचे उनके पास, आप जानते हो किस प्रकार उनका पीछा करके उनके भगा दिया. और जब उनका पीछा कर रहे थे नित्यानंद हरिदास दोनों भाग रहे थे और उनके पीछे थे ये दो मोटे जगाई मदाई, दोनों थोड़े पहलवान थे क्योंकि शराब शराब ज्यादा पियो तो पहलवान बन जाते हो ना. तो दोनों का वजन जब भारी था और दोनों भाग रहे थे, हरिदास ने नित्यानंद को कहा ए अवधू तुमने हमें फंसा दिया यहां लाकर, अभी देखो अब हम लोग की जान खतरे में है. फिर वो आगे भागे 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 और फिर वो ये दो जगह मंगाई थक गए थे, तो उनका हवा में जान बची. तो फिर जाके ये महाप्रभु जी को मिले, और जब महाप्रभु जी को मिले उन्होंने ये सूचना दी क्या बीती। तो अगले दिन फिर से आए थे प्रचार करने के लिए, और मदाई ने पत्थर फेंका जिसके द्वारा नित्यानंदा के माथे से खून बहने लगा। जब महाप्रभु जी को ये सूचना मिली तुरंत वो पहुंचे वहां सुदर्शन चक्र के साथ, पर नित्यानंदा ने रोक दिया उन्हें सुदर्शन चक्र का उपयोग करने से। और नित्यानंद ने कहा ये जगाई, इसने मदाई को रोका। मदाई दूसरा पत्थर फेंकने वाला था, एक पत्थर फेंका खून बहने लगा और मदाई के हाथ में दूसरा पत्थर भी आ गया था, पर जगाई ने कहा नहीं, ये सन्यासी है, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जब नित्यानंद ने महाप्रभु जी को कहा कि जगाई ने रोक दिया मदाई को दूसरा पत्थर फेंकने से, महाप्रभु जी बड़े खुश हुए। फिर मदाई के हृदय में भी पछतावा आया, और जब पछतावा आया वो गए महाप्रभु के पास। महाप्रभु ने क्या कहा, जाओ नित्यानंद से क्षमा मांगो पहले। फिर वो गए नित्यानंद जी के पास और अब माफी मांगी अपने अपराधों की, और फिर नित्यानंद ने क्या किया, उन्हें क्षमा दी। तो वैष्णव भक्त जो है क्षमा देने को तैयार है, पर उसका ये अर्थ नहीं कि हम धंधा बना लें, अपराध करें और क्षमा मांगें। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे क्रिश्चियन ईसाइयों का सिद्धांत है सारा हफ्ता अपराध करो, फिर रविवार को चर्च में जाओ और एटोनमेंट करो, फिर वापस आकर फिर अपराध करो। तो प्रभुपाद जी ने कहा एक दो दफा तीन दफा माफ हो सकता है, पर ये नहीं कि हम बार बार करें। तो यहां हम देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने मायावादियों को क्षमा कर दिया, उन्हें क्षमा कर दिया, और उन्हें क्या किया उन्होंने आगे उन्हें कृष्णा नाम दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में तात्पर्य में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कृपा अवतार हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने प्रसिद्ध भजन जो आज सुबह भी आप भक्तों ने गाया था, क्या कहा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, चैतन्य महाप्रभु जी आप मेरे ऊपर दया कीजिए, पतित पवन हेतु थवा अवतारा। आप अवतारित हुए हो किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। और देखा जाए इस कलियुग में हम सभी पतित हैं, खलो शुद्र संभवा, चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म हो पर असल में शास्त्रों की दृष्टि से हम शुद्र की बुद्धि रख रहे हैं। तो महाप्रभु जी पतित हुए अवतारित हुए किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। पतित पवन तब अवतार मोह सम पतित प्रभु रा पाए ब्यार, और सब पतितों में सबसे अधिक पतित कौन है, मैं हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी को कहा गया नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रधाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत वैश्य नमः। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये भगवान के दया दयालु अवतार हैं, जो प्रकट हुए किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने इस कलियुग में एक बहुत ही सरल साधन दिया है। महाप्रभु जी क्यों पति प्रकट हुए, पतितों का उद्धार करने के लिए। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक श्लोक का वर्णन कर रहे हैं जिसमें आचार्य भक्ति सिखावनु सबारे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि मैं कलियुग में प्रकट होऊंगा भक्त के रूप में, और भक्त के रूप में प्रकट होकर मैं लोगों को शिक्षा दूंगा भक्ति के विषय में। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे जैसे एक अध्यापक विद्यार्थी के हाथ को पकड़कर उसे लिखना सिखाता है। आप सब जब स्कूल में थे आपको याद होगा आपकी टीचर आपके पास बैठकर हाथ पकड़कर आपको लिखना सिखाती थी तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो टीचर विद्यार्थी बन गए तो उसी प्रकार महाप्रभु जी हैं कौन स्वयं भगवान अपनी अचरी भक्ति सिखा मुंह सुबारे मैं भक्त के रूप में प्रकट होकर लोगों को भक्ति की शिक्षा दूंगा तो चेतन महाप्रभु जी प्रकट हुए किस रूप में भक्त के रूप में और जब कई बार ये कहा जाता था कि आप स्वयं भगवान हो तो महाप्रभु जी अपने कानों को बंद कर देते थे कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया पर उन्होंने अपने दिव्य लीला भी प्रकट की क्यों क्योंकि भविष्य में अगर कोई व्यक्ति ये दावा करे कि वहां प्रभु भगवान नहीं थे क्या दिव्य लीला प्रकट की तो आप उनका वर्णन भी कर सकते हो आज के वातावरण में एक प्रसिद्ध प्रचारक है उनका नाम लू मैं कृपालू महाराज सुना होगा नाम तो उनके शिष्य कहते हैं ये महाप्रभु जी के अवतार हैं नित्यानंद के अवतार हैं तो मैंने उनके शिष्यों को कहा कि महाप्रभु जी जब प्रकट हुए थे उन्होंने सद्भुज का दर्शन दिया अपने विराट रूप का दर्शन दिया तो आपके कलयुग के आपके अवतार ने सद्भुज का रूप प्रकट किया है कभी क्या तो आजकल कई हैं कई अवतार हो चुके हैं जिन्होंने ये दावा किया महाप्रभु जी के अवतार हैं तो महाप्रभु जी सब भगवान प्रकट हुए भक्त के रूप में पर उन्होंने अपने दिव्य लीला भी प्रकट की जब वो बिल्कुल छोटे ही थे 3 साल के और ब्राह्मण उनके घर में आया था उस ब्राह्मण को उन्होंने अपना दिव्य दर्शन दिया और साथ में ये भी कहा कि ये सूचना किसी को देना मत जब उन्होंने अपने अपने विराट रूप को भी प्रकट किया जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने बड़े सुंदर स्तुतियों के द्वारा महाप्रभु जी को परम भगवान स्वीकार किया तो उन्होंने अपने सद्भुज का रूप भी प्रकट किया उन्होंने अपने विराट रूप भी प्रकट किया था तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं वह प्रकट हुए किस लिए पतितों के उद्धार के लिए इस अध्याय में आपने कथा पढ़ी किस प्रकार महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों का उद्धार किया और फिर ये सारे सन्यासी पहले तो महाप्रभु जी सन्यासियों को देखते भी नहीं थे पर जो सन्यासी हैं वो वैष्णवों से डरते हैं जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम गुरु जी उन्हें नरसिंह का गुरु भी कहा जाता है क्योंकि वो बड़े स्पष्ट रूप से स्थापित करते थे कि मायावादी सिद्धांत गलत सिद्धांत है अपराध है और कहा जाता है कि अगर भक्ति सिद्धांत जी सड़क के दाहिने तरफ में होते थे तो मायावादी क्रॉस करके बाएं तरफ आ जाते थे कि उनके बिल्कुल सामने खड़े होने से भी डरते थे क्योंकि भक्ति सिद्धांत जी इतने तेज रूप से ये स्थापित करते थे वो सिद्धांत गलत है तो चैतन्य महाप्रभु जी फिर इन सन्यासियों के साथ बैठकर उन्होंने हरिनाम भी किया और प्रसाद भी ग्रहण किया तो चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों के सारे अपराधों को क्षमा कर दिया इस क्षमा के विषय में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद ने मदाई को क्षमा कब की कब जब मदाई ने प्रणाम करके अपने अपराधों की माफी मांगी तो अगर आप कुछ अपराध करो और कहो आई एम सॉरी प्रभु उसे काम नहीं चलेगा अगर आपने अपराध किया है तो आपको प्रणाम दंडवाद प्रणाम करके उस माफी के उस अपराध किया है कि क्षमा मांगनी चाहिए बड़े स्पष्ट रूप से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद ने मदाई को क्षमा किया केवल जब मदाई ने दंडवाद प्रणाम करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी तो अगर भूल चूल से अपराध हो जाए तो अलग बात है पर अगर जानते हुए आप वैष्णव अपराध करो और फिर अगर आप पहचानो कि आपने अपराध किया है तो आप इतनी ताकत होनी चाहिए क्या कि आप प्रणाम करके अपराध के लिए क्षमा मांगे और अगर दूसरा व्यक्ति वैष्णव है तो आपको जरूर क्षमा कर देगा, और अगर वो खुद कमजोर वैष्णव है तो कहेगा नहीं तुम्हें इसका बदला मिलना चाहिए, और अगर वो वैष्णव है तो खुशी से क्षमा कर देगा। तो हमें सावधान रहना चाहिए, पर अगर गलती हो भी जाए तो उसके उस अपराध को स्वीकार करने में हिचकना नहीं चाहिए। तो महाप्रभु ने क्या किया, कृष्ण नाम का आशीर्वाद दिया। तो महाप्रभु जी प्रकट हुए थे किस लिए, कृष्ण नाम की दया सबको देने के लिए। आगे प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, आगे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि प्रचारक का कार्य यह है कि हर व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश दिया जाए। और जैसे आप जानते हो महाप्रभु जी ने हर भक्त को क्या आदेश दिया, हर भक्त को ये आदेश दिया जारेदा को ताहे को कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण उपदेश का क्या मतलब, लोगों को बोलो बोलो कृष्ण, कृष्ण की चर्चा करो, फिर भजो कृष्ण, कृष्ण की उपासना करो, फिर लो कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम लो। तो ये संदेश हमने देना है। और आगे कृष्ण माता कृष्ण पिता कि वो ही है आपके असली माता पिता, कृष्ण धन प्राण वही आपके प्राण है, यही असली धन है। अगर लोग समझ जाएं कि ये असली धन है तो वो असली सुख प्राप्त करेंगे। रूप गोस्वामी जब सरकारी नौकरी में थे उनके पास इतना धन था कि जब उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। रघुनाथ दास गोस्वामी करोड़पति पिता, आज से 500 साल पहले उनके पिता की आमदन थी 5 लाख रुपए महीना या साल, पर बड़ी ऊंची आमदन थी। पर उन्होंने ये सब भौतिक सुख को त्याग कर ब्रज में आए और हरि नाम के सहारे जिए और बिल्कुल संतुष्ट थे हर स्थिति में। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि जब महात्मा गांधी का स्वतंत्रता का आंदोलन था तो उस समय उनके कई सहयोगी थे, उनमें से एक थे जो बहुत बड़े वकील थे जो महात्मा गांधी को बकायदा धन देते थे अपने स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो महात्मा गांधी ने एक दिन उनसे कहा कि तुमने धन तो बहुत मुझे दे दिया है, अभी मुझे तुम चाहिए, तुम अपनी प्रैक्टिस छोड़कर मेरे साथ आओ। तो आया पर महात्मा गांधी के साथ थे 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, पर मन में सारा यही विचार रहता था अरे मैंने इतनी बड़ी प्रैक्टिस थी, इतने खुश नहीं थे। और फिर 1-2 महीने बाद हार्ट अटैक हो जो मृत्यु हो गई। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे कि अगर आप भगवान के शरणगत हो तो धन किसको त्याग कर भी आप संतुष्ट रहोगे, और अगर भक्ति के मार्ग में नहीं जुड़े हो तो ऐसा नहीं है संतुष्ट रहना। तो जो भक्त हैं वो हर स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं, क्या भगवान के शरणगत होने के लिए। तो यहां इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भक्त जो है उसका मूल भाव यह है कि वो लोगों को हरि नाम की महिमा के विषय में उपदेश दे, वो हरि नाम की महिमा के विषय में कन्विंस करे, विश्वास दिलाए कि यही है असली साधन। दूसरे शब्द में प्रचार के कार्य में जुड़े। आप हमारे साहित्य में देखते हो कि प्रचार के कार्य को बहुत बल दिया गया है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा प्रचार करता है। और श्रीमद् भागवत में अनेक श्लोक हैं जहां की इस विषय पर बल दिया गया है। प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि हे भगवान मुझे पर्वत में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं जंगल में नहीं जाना चाहता, मैं एकांत के स्थान में नहीं रहना चाहता, तो आप कहां रहने चाहते हो, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां मैं आपके उपदेश को आगे बढ़ा सकूं। प्रभुपाद जी बुरी आयु में 60-65 साल की आयु में वृंदावन छोड़कर पश्चिम देशों में गए, वहां प्रभु जी के संदेश को आगे बढ़ाने गए। तो हम भक्तों में भी प्रचार के कार्य के लिए उत्साह होना चाहिए। अगर आप प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ो, अगर आप भगवान की वाणी को पढ़ो, और आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं क्या, प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु टीचेस अस दैट दोज हु प्रीच मीट ऑलमोस्ट ऑल ऑफेंडर्स हु अपोज टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट इज द प्रीचर्स ड्यूटी टू कन्विंस देम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रचारक को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर प्रचारक जो है प्रयास करता है लोगों को यह विश्वास दिलाना कि हरि नाम ही असली उपाय है। तो ये नहीं कि अगर हमें कठिनाई का सामना करना पड़े तो हम प्रचार के कार्य से हट जाएं। जैसे कि आपने नित्यानंद हरिदास की कथा सुनी, कैसे उन्हें यही सूचना दी गई थी पहले, इन दो के पास मत जाओ, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जब भी हो गए। और प्रभुपाद जी जब पश्चिम देशों में जाने का प्रयास कर रहे थे, श्रीमती मुरार जी के जिन्होंने उनको टिकट दी मुफ्त के लिए, उन्होंने कहा स्वामी जी आप कहां 70 साल की आयु में उस ठंडे देश में जाओगे, आप वहां मर जाओगे ठंड में। उन्होंने ऐसे कहा कि आप मर जाओगे अमेरिका के ठंड में, 70 साल की आयु में आप जा रहे हो अमेरिका। तो प्रभुपाद जी को विश्वास था कि महाप्रभु जी का की भविष्यवाणी सत्य बनेगी अगर वो अपने गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास करेंगे। तो उसी प्रकार हमारे जो महान आचार्य हुए हैं उन्होंने हम सबको ये आदेश दिया है जाओ प्रचार करो। और प्रचार करने का अर्थ क्या है, हर प्रकार की कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना। ये नहीं हम प्रचार करेंगे अगर हमें एयर कंडीशन कमरा मिलेगा प्रचार के लिए, धूप को हम सह नहीं सकते, हमें सनस्ट्रोक हो जाता है। सनस्ट्रोक को क्या कहते हैं हिंदी में, लू लग जाती है। इस विषय में प्रभुपाद जी की कथा है कि एक समय प्रभुपाद जी कनॉट प्लेस में बैक टू गॉड एंड मैगजीन बांट रहे थे और बहुत गर्मी थी, गर्मी के खाने उन्होंने लू लग गई और वो बेहोश हो गए। फिर जो आसपास के लोग थे, आप लोग तो जब प्रचार के लिए जाते हो साथ में एक भक्त रहता है, प्रभुपाद जी तो अकेले जा रहे थे, कोई साथ था ही नहीं। और फिर लोगों पानी लाए, उनको होश में लाए, होश में आते ही फिर से उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। तो हम उस परंपरा में आ रहे हैं जहां इतने प्रसिद्ध उदाहरण है, तो हमें इन उदाहरणों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये नहीं हम प्रचार करेंगे अगर दूसरा व्यक्ति हाँ में हाँ मिलाएगा, अगर शक है कि वो नहीं स्वीकार करेगा तो हम प्रचार करने नहीं जाएंगे। नहीं, हाँ प्रचार करना हमारा कार्य है, ये हमारे महान आचार्यों का आदेश है। और अगर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ो तो फिर आप प्रचार के महत्व को समझोगे। अगर आप इन भक्त ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे और विश्वास कर रहे कि नहीं नहीं हमें दूसरे ग्रंथों में ज्यादा विश्वास है, फिर आप प्रचार के आंदोलन को नहीं समझोगे और आप बाबा जी जीवन बिताओगे। पर ये बाबा जी के लिए नहीं है, ये संस्था बाबा जी के लिए अनेक ढोंगी संस्थाएं हैं। ये संस्था केवल उनके लिए है जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के भाव को समझने को तैयार है, और जो कि जो हमारे महान आचार्य हुए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर भक्तिनोद, उन सब में ये प्रचार का भाव था और उन सब ने अपने लिए तात्पर्यों के द्वारा ये स्थापित किया है क्या, सबसे ऊंची सेवा जो व्यक्ति कर सकता है ये प्रचार की सेवा। तो प्रचार की सेवा अनेक माध्यम के द्वारा की जाती है, और आज के श्लोक में भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि प्रचारक का भाव क्या, भावना क्या रहनी चाहिए कि हर कठिन परिस्थिति में भी भगवान के संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। आपको आश्चर्य होगा कि विश्व के कई स्थान हैं जहां भक्तों के जीवन को हमेशा खतरा रहता है, जेल में जाने का, नौकरी से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा और अनेक और परिस्थितियों का। जब भी वो प्रचार करते हैं, कम से कम भारत में दिल्ली में आपको इन चीजों का तो खतरा नहीं कि आप प्रचार के लिए जाओगे तो कोई गुंडा आपको उठा लेगा या कोई पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे। वो तो केवल यहां एक ही समस्या है, आपका मन कहता है नहीं नहीं तुम प्रचार के योग्य नहीं हो, और तो कोई समस्या नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी ने हमें यह मंत्र दिया, क्या टीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद जी ने क्या मंत्र दिया, सब प्रकार के सेवा में प्रचार की जो सेवा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये प्रचार की भावना हम सब में होनी चाहिए, और अगर हम ध्यान से प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें तो हम प्रचार के कार्य में जाने के लिए इच्छुक रहेंगे। हम खुद कहेंगे हम प्रचार में जाना चाहते हैं। अगर अच्छा प्रसाद हो, केक हो, ये सब, तो आप सब नहीं भागते, हमें प्रसाद चाहिए, केक हमें भी चाहिए, महाप्रसाद चाहिए। तो जैसे आप महाप्रसाद के लिए तरसते हो, समोसा का चोरी के लिए तरसते हो, उसी प्रकार प्रचार के कार्य के लिए हमें तरसना चाहिए। हमें कहना चाहिए नहीं, हम प्रचार के कार्य में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रचार के कार्य में जाओगे तो ज्यादा कृपा प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी कहते थे यू गिव कृष्णा यू गेट कृष्णा। जब आप प्रयास करते हो लोगों को कृष्णा का संदेश देने के लिए, तो जब भगवान आपको बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा अब दृढ़ होकर उनके शरणगत हो सको। आखिर हमें भी भगवान की कृपा चाहिए। जैसे यहां आप देख रहे हो मायावादी सन्यासियों की भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, भगवान ने उन्हें कृष्ण नाम दिया, तो हमें भी भगवान की कृपा की भूख रखनी चाहिए। और ये कृपा प्राप्त होती है, ये निर्भर है हमारे प्रयास के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु जी का आंदोलन है प्रचार का आंदोलन। प्रभुपाद जी ने इस प्रचार के कार्य को गंभीरता से स्वीकार किया, इसीलिए थोड़े समय में ही वो कृष्ण भक्ति को विश्व के हर कोने में ले गए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए प्रचार का कार्य कठिन है, पर साधारण स्थिति में भी कठिन स्थिति में आपको ज्यादा कृपा मिलती है ना। अगर आप कोल माइन में काम कर रहे हो बिहार में, तो आपको ज्यादा ऊंची तनख्वाह मिलेगी फैक्ट्री में काम करने से। तो उसी प्रकार जब आप प्रचार के दौरान कठिनाइयों को उठाते हो तो भगवान गुरु परंपरा ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आज सारा विश्व अज्ञानता में है, आज लोग नरक की ओर जा रहे हैं, हमें किसी माध्यम से लोगों को जोड़ना है भक्ति में। एक जोड़ने का साधन है हरिनाम संकीर्तन में हम सबको जाना चाहिए। जब आप हरिनाम में जाते हो तो लोग हरिनाम सुनते हैं, तो हरिनाम सुनने में ही सबको लाभ है। जब आप हरिनाम में जाते हो, जो पेड़ हैं रास्ते में उनको भी लाभ पहुंच रहा है। करोड़ों चींटियां होती हैं, इंसेक्ट माइक्रोज, जिनको आप देख नहीं सकते, जो हरि नाम सुनते हैं उसका लाभ पहुंचता है। एक और साधन है बड़े बड़े उत्सव। हम उत्सव करते हैं, फेस्टिवल्स, किस लिए? प्रजा को आकर्षित करने के लिए। फिर हजारों लोग यहां मंदिर में आते हैं, 10,000 लोग लगभग रोज आते हैं प्रचार के लिए, दर्शन के लिए। अगर हम उनको अपनी संगत दें, थोड़ा प्रचार करें, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी तेजी के साथ उनमें भक्ति की भावना जागृत हो सकती है। फिर यह प्रचार का साधन है ग्रंथों का वितरण। ग्रंथों का वितरण का जो साधन है, ये प्रभु जी ने ग्रंथों के वितरण पर बल दिया। क्यों? क्योंकि ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं। अगर आज सारे विश्व में लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, उसका मूल कारण यह है, ये शिक्षा जो कि ग्रंथों द्वारा प्राप्त होती है। जब वो ग्रंथों को पढ़ते हैं, भगवान की वाणी को पढ़ते हैं, महान संतों की व्याख्या को पढ़ते हैं, तो समझ पाते हैं कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इसलिए इस कार्य को क्या कहा गया है, बृहद मृदंगा। साधारण मृदंगा की आवाज थोड़ी दूर तक ही जा सकती है, पर ग्रंथों के वितरण की आवाज बहुत दूर। मेरी तो ये इच्छा है कि हर भक्त, खासकर सारे ब्रह्मचारी, सबका ऐसा शेड्यूल बनाया जाए कि सबको ग्रंथों के वितरण की सेवा का अवसर प्राप्त हो हर महीने एक हफ्ते के लिए। हाँ मधुसूदन क्या कह रहे हैं, तो मतलब ये जो सेवा है, प्रचार की सेवा, ग्रंथों की सेवा, ये सेवा के द्वारा हम लोगों को जोड़ते हैं कृष्ण भक्ति में। तो हमें प्रचार के कार्य से डरना नहीं चाहिए, और अगर हमारे में कुछ कमी भी हो, कई बार हमारे में ये घबराहट रहती है, हमारे में ये योग्यता नहीं है, आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस। अगर आप प्रयास करोगे तो भगवान सदा प्रयास में सहयोग देने को तैयार है, अगर प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे कार्य होगा। इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी के शब्दों में, इससे चाहे कि महाप्रभु चैतन्य के चरण के चरण पर हम चलें उनके आदेश के अनुसार। तो हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए, हमारा विचार क्या रहना चाहिए, हम हैं मूर्ख। जैसे जब महाप्रभु जी को कहा आप हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते, उन्होंने क्या कहा, मैं हूं मूर्ख। गुरु ने क्या सोचा, मैं मूर्ख हूं। तो तीन प्रकार के शिष्य आप बन सकते हो ध्रुव महाराज के अनुसार। एक है सबसे उत्तम कोटि का शिष्य है जो गुरु के भाव को समझता है और उसका पालन करता है बोले बिगर भी। दूसरे श्रेणी का भक्त शिष्य है जिसे कहा जाए सेवा करो, वो स्वीकार करता है मैं मूर्ख हूं मुझे मार्गदर्शन चाहिए और उसका पालन करता है। वो तीसरे श्रेणी का शिष्य कौन है, चाहे आप कुछ भी कहो उसने करना वही है जो उसके मन में है। तो ये हमारा चुनाव है, आप पहले श्रेणी का भक्त बन सकते हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पर ये भी भूलना नहीं चाहिए भगवान क्या कहते हैं, ये यथामहं प्रपद्यन्ते, जितनी मात्रा में जो शरण लेगा उसी के अनुसार मैं उसे बुद्धि दूंगा मुझे समझने के लिए। ये नहीं कि आप 5 रुपए दो और आपको 5,000 का माल मिल जाएगा, जो जैसा दाम भरोगे वैसा माल मिलेगा। तो यहां चैतन्य महाप्रभु जी ने मायावादियों के अपराधों को क्षमा कर दिया, तो ये क्षमा की भावना हम सब में होनी चाहिए, क्षमा की भावना। मुझे याद है एक बार जब मैं नया भक्त था 1968 में, हम लोग एक क्रिश्चियन स्कूल में गए थे लेक्चर के लिए, क्रिश्चियन स्कूल था जिसमें कई नंस थी। तो प्रभुपाद जी ने वहां प्रवचन दिया था, और प्रवचन के बाद प्रभुपाद जी ने पूछा एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है, तो एक भारतीय व्यक्ति था, वैसे तो सब कैनेडियन गोरे लोग थे, पर एक भारतीय लड़का आदमी था जो कि बकायदा मंदिर आता था। जब ये संस्था शुरू हुई बहुत कम भारतीय लोग आते थे, बहुत कम, वो सोचते थे ये तो कोई विदेशी धर्म है। तो उसने सबके सामने प्रभुपाद का अपराध किया था, तो वो हिंदू, पर कहने लगा आप ये धर्म को इस क्रिश्चियन देश में आकर क्यों सिखा रहे हो। वो क्रिश्चियन स्कूल था, कॉन्वेंट थी, तो कॉन्वेंट में जहां सब नंस वगैरह बैठे थे, तो कहने लगा व्हाई यू टीचिंग दिस इन दिस क्रिश्चियन कंट्री, दे डोंट नीड योर रिलीजन, दे हैव जीसस क्राइस्ट, उनके पास जीसस क्राइस्ट। खैर भक्तों को गुस्सा आया था, पर प्रभुपाद जी बिल्कुल शांत सहनशील थे, तो प्रभुपाद का अपराध किया। फिर 3 महीने बाद, ये जून के महीने में घटना बीती थी, तो अगस्त के महीने में प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल छोड़कर जा रहे थे अमेरिका, तो प्रभुपाद जी ने मुझे कहा कि बुलाओ उस आदमी को, मैं उसे मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा आप मिलना क्यों चाहते हो, उसने इतनी बुरी तरह आपका अपराध किया। तो प्रभुपाद जी का नहीं नहीं उसे बुलाओ, तो प्रभुपाद जी निकलने से पहले उसे आशीर्वाद देकर आगे गए। तो जो वैष्णव भक्त हैं उनमें क्षमा की भावना होनी चाहिए और उनमें दया की भावना होनी चाहिए, निम्रता की भावना होनी चाहिए, अहंकार से हमें बचना चाहिए। अहंकार के कारण हम इस भौतिक जगत में हैं, और कई बार भक्ति में आने के पश्चात भी हमारा अहंकार रहता है। शरीर का वजन है 40 किलो, अहंकार का वजन है 80 किलो, तो आपका अहंकार आपके शरीर से भी भारी है, और अहंकार के कारण हम कुछ उपदेश सुनने को तैयार नहीं है। कई बार भक्त इतने ढीठ बन जाते हैं कि कुछ भी उपदेश दिया जाए नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो फिर आप भक्ति के मार्ग में परिवर्तन नहीं कर पाओगे। हमें सदा ये सोचना चाहिए, हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है, हमें भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, त्रिनादपि सुनि चेना सरोवर अमान्य मनादि कैसे न दिशाधारी। इस श्लोक का केवल ये अर्थ नहीं कि आप इस श्लोक को कंठस्थ कर लो, आप बेशक इस श्लोक को कंठस्थ मत करो, पर इसका जो भाव है उससे अनुकूल करो। और अगर आप इस श्लोक के भाव को अनुकूल करोगे, किस प्रकार महाप्रभु जी चाहते हैं हम अत्यंत सहनशील बने, किस प्रकार महाप्रभु चाहते हैं हम दूसरों को आदर दें, किस प्रकार महाप्रभु चाहते हैं हम आदर दें पर उसके बदले में किसी प्रकार की आदर की उम्मीद नहीं रखें, फिर आप ये हरि नाम को सदा कर सकोगे। अगर आपके मन में अहंकार है और या कोई और आपके मन में ये अपराध है दूसरों के प्रति, गलत विचार है, तो फिर आध्यात्मिक परिवर्तन कठिन हो जाएगा। तो चेत प्रभु जी कह रहे हैं, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, सबको हरि नाम के साथ जोड़ना। और फिर महाप्रभु जी गए इन मायावादी सन्यासियों के साथ बैठकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। और जब महाप्रभु जी के भक्तों ने सुना कि किस प्रकार महाप्रभु जी ने इन मायावादी सिद्धांतों सन्यासियों का उद्धार कर दिया, चंद्रशेखर तपन मिश्र सनातन गोस्वामी, वो सब इतने प्रसन्न हुए। तो महाप्रभु जी प्रकट हुए थे पतितों का उद्धार करने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु जी अपनी यात्रा लेकर दक्षिण भारत में आए थे, अगर आज भी आप दक्षिण भारत जाओ तो कई स्थान हैं जहां के महाप्रभु जी आए थे अपनी यात्रा के साथ। और महाप्रभु जी जब अपनी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो पूरे समाज को उन्होंने कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया था, पूरे समाज को वैष्णव बना दिया था। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी का आंदोलन है, ये आंदोलन है पतितों का उद्धार करने के लिए। और जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने मायावादियों का उद्धार किया, हमें भी प्रयास करना चाहिए कि आप दिल्ली वालों का उद्धार करो, है ना। आपके दिल्ली में कितनी क्या आबादी है, मुझे कोई कह रहा था 2 करोड़ आबादी है, मुझे वेद व्यास कह रहे थे उस दिन, अब दिल्ली के बाद ही पूरे भारत में सबसे बड़े, बॉम्बे से भी आगे बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या, प्रचार का और मौका है आपको, ज्यादा गिराक है प्रचार के। अगर आप छोटे शहर में जाओ तो कई बार भक्त कहते हमने तो सबको प्रचार कर लिया, पर दिल्ली में आप जितना प्रचार करोगे उतना कम है कि नहीं, क्योंकि लोग नए लोग रोज आ रहे हैं। और प्रचार के अनेक साधन हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी ने भक्तों को शुरू में कहा था अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, तो उन दिनों में जो प्रभुपाद जी के अमेरिकन शिष्य थे उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था कि हम धार्मिक किताबों को सड़कों में कैसे बांटेंगे। तो वो चिंता में हो गए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी कह रहे हैं रोज 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 डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, वी वॉन्ट प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, तो मुझे खुश करना चाहते तो ग्रंथों को बांटना कैसे करें, हमें किसी को अभ्यास ही नहीं है। फिर उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। फिर एक समय एक भक्त केशव गाड़ी में जा रहा था और रुका एक पेट्रोल स्टेशन में पेट्रोल लेने के लिए, तो पेट्रोल लेने के लिए रुका तो पेमेंट खैर डॉलर में देने के बजाय, उन दिनों में कृष्णा बुक किताब जापान से छप कर आई थी, तो उसने वो पेट्रोल पंप वाले को कहा इंस्टेड ऑफ मनी इफ आई गिव यू दिस बुक विल यू एक्सेप्ट इट, तो मान गया, पैसे की बजाय उसने कृष्णा बुक ले ली। तो जब पहली बार पैसे की जगह उसने किताब दी तो वो भक्त बड़ा खुश हुआ, उसने सोचा कि अगर हमें किताब अभी लोगों को बांटेंगे तो लोग खरीदेंगे, पैसे की बजाय उसने किताब ले ली। तो फिर उन्होंने जाकर हाँ लिकर स्टोर दूसरी दुकानों के आगे खड़े होकर लोगों को किताबें बेचने का शुरू किया। इस प्रकार हंसते हंसते नए नए साधनों का उपयोग किया और हंसते हंसते ये ग्रंथों का वितरण की जो सेवा है बड़ी। तो अगर हम प्रयास करेंगे कि हम प्रचार करना चाहते हैं तो भगवान आपको अनेक साधन देंगे। जैसे आजकल आपके दिल्ली के भक्त केशव हरि के प्रेरणा से आजकल गाड़ियों में ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पहले आप लोग स्टॉप लाइट्स में कर रहे थे तो हमने कहा स्टॉप लाइट्स में मत करो क्योंकि वहां पोल्यूशन बहुत ऊंचा है। तो अभी केशव हरि के हम आभारी हैं कि ये केशव हरि साल में 360 दिन जाता है ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और इनके साथ एक और प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो वृंदावन में हैं, अयोध्या पति, जो कि जनरल मोटर्स में इंजीनियर थे अमेरिका में, अभी रिटायरमेंट के बाद वृंदावन में आए हैं। वो भी रोज जाते हैं गाड़ियों में सुबह और आते हैं रात को, कोई कंडक्टर उनसे टिकट भी नहीं पूछता। और ये क्या करते हैं, किताबों को बांटते हैं, और कई भक्त इनके साथ जा रहे हैं, चार पांच। मुझे डर है कि बहुत ज्यादा जाएंगे तो शायद ये कंडक्टर जाग नहीं जाए। और ये गाड़ियों में जा रहे हैं और लोगों को प्रचार कर रहे हैं। मुझे कह रहे थे कि आप कह रहे थे ना 15-20 किताब, प्रचार का बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि लोग गाड़ी में बैठे हैं तो आप जाके उनको प्रचार करते हो। तो ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लोगों में बड़ी होशियारी है, वो लोग कोई मौका नहीं छोड़ते प्रचार का। मैंने देखा है अफ्रीका में भी, मैं कई बार जाता हूं, गांव गांव में वो पहुंचे हैं, भारत के गांव गांव में पहुंचे हुए हैं क्रिश्चियन लोग। हिंदू प्रचारक जाने से डरते हैं, पर क्रिश्चियन प्रचारक गांव गांव, और गांव में कोई एयर कंडीशन कमरा नहीं मिलता रहने के लिए, पर वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें यह प्रचार का उत्साह है। तो चाणक्य पंडित ने कहा टेक गोल्ड इवन फ्रॉम स्टूल, चाणक्य पंडित ने कहा सोना अगर टट्टी में भी मिले, गंदे स्थान से भी मिले तो ले लो, ताकि हमें कोई अच्छा विचार किसी स्थान से भी मिले हमें उसका उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो संक्षेप में आज के श्लोक में कृष्णदास कावड़ा जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने सारे मायावादियों के अपराधों को क्षमा किया और बड़े खुशी के साथ सबको क्या दिया, हरि नाम। उसी प्रकार हम सबका भाव होना चाहिए कि हम सबको क्या दें, हरि नाम। और हम सबको सबसे क्या कहना चाहिए, बोलो कृष्णा। अब बोलिए मेरे बात, बोलो कृष्णा, भाजो कृष्णा, लो कृष्णा नाम, कृष्णा माता, कृष्णा पिता, कृष्णा धन प्राण, कृष्णा असली धन है, वह हरे का प्राण है, हरे का माता है पिता है। तो ये हमें अपने हृदय में बिठाना है और आगे फिर दूसरों के हृदय में बिठाना है। नित्यानंदा जी इसको, इस भजन को गाकर, नित्यानंदा जी ने, जब नित्यानंदा जी गए थे हरिदास ठाकुर के साथ नवद्वीप में प्रचार के लिए, तो सबको ये कह रहे थे कृष्णा माता कृष्णा पिता। तो इस प्रकार हमें भी सबको कहना चाहिए, सब तैयार हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हाँ, इनका प्रश्न है, अगर कोई बार बार आपके विरोध में अपराध कर रहा है तो आपका क्या प्रश्न है? अगर दूसरा व्यक्ति अपराध कर रहा है तो आप सह लो, आपको ये कहने की जरूरत नहीं तुम तो अपराध कर रहे हो तो मैं थप्पड़ मारूंगा। आप सह लो, जो अपराध करेगा उसे खुद ही दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि परम भगवान हर कार्य के साक्षी हैं, हर विचार के साक्षी हैं। आप एक दूसरे से कोई कई घटनाओं को छुपा सकते हो, तो परम भगवान जो हरि के हृदय में उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में, उनसे आप कुछ छुपा सकते हो नहीं। तो अगर दूसरा व्यक्ति अपराध कर रहा है, अनेक प्रकार के अपराध हैं, हरि नाम अपराध, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, सब प्रकार के अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।